त्वमस्य लोकस्य विभोरि रक्षिषु गृहे वतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्यसंज्ञा सुरकोटियुथपये निर्विह्युमाना निहनिष्य च मुहा त्वमस्य लोकस्य विभोरिरिक्षिषु गृहे वतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्यसंज्ञा सुरकोटियुथपये निर्विह्यमाना निहनिष्य च मुहा त्वमस्य लोकस्य विभोरिरक्षिषु गृहे वतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्यसंज्ञा सुरकोटियुथपये निर्विह्यमाना निहनिष्यसे च मु त्वमस्य लोकस्य विभोरिरक्षिषु गृहे वतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्यसंज्ञा सुरकोटियुथपये निर्व्यूह्यमाना निहनिष्यसे च मु त्वमस्य लोकस्य विभोरिरक्षिषु राजन्यसंज्ञा सुरकोटियुथपये निर्व्यूह्यमाना निहनिष्यसे च मु माताजी त्वमस्य लोकस्य विभोरिरक्षिषु गृहे वतीर्णो ममाखिलेश्वर राजन्यसंज्ञा सुरकोटियुथपये निर्व्यूह्यमाना निहनिष्यसे च मु त्वमस्य लोकस्य विभोरिरक्षिषु गृहे वतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्यसंज्ञा सुरकोटियुथपये निर्व्यूह्यमाना निःशिष्यसे च मु शब्दार्थ त्वम् आप अस्य इस जगत के लोकस्य विशेषतया इस मर्त्य लोक के विभो हे परमेश्वर रिरक्षिषुः असुरों के उत्पात से सुरक्षा के इच्छुक गृहे इस घर में अवतीर्ण असी अब प्रकट हुए हो मम मेरे अखिलेश्वरा यद्यपि आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं राजन्य संज्ञा असुर कोटि युथपये राजनीतिज्ञों तथा राजाओं के रूप में लाखों असुरों तथा उनके अनुयायियों समेत निर्व्यूह्यमाना सारे संसार में विचरण कर रहे निहनिष्य से मारेगा चमूह सेना साज समान सैनिक अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, हे परमेश्वर, हे समस्त सृष्टि के स्वामी, आप इस जगत की रक्षा करने की इच्छा से मेरे घर में प्रकट हुए हैं। मुझे विश्वास है कि आप क्षत्रियों का बाणा धारण करने वाले राजनीतिज्ञों के नायकत्व में जो असुरों की सेनाएं संसार भर में विचरण कर रही हैं, उनका वध करेंगे। निर्दोष जनता की सुरक्षा के लिए आपके द्वारा इनका वध होना ही चाहिए। तात्पर्य, कृष्ण इस जगत में दो कारणों से प्रकट होते हैं, परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम। निर्दोष धार्मिक भक्तों की रक्षा करने तथा उन अशिक्षित असभ्य असुरों का वध करने के लिए जो राजनीतिक सत्ता के लिए कुत्तों की तरह भौंकते हैं और परस्पर झगड़ते रहते हैं। कहा गया है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। हरे कृष्ण आंदोलन भी नाम रूप में कृष्ण का अवतार ही है। हम में से हर व्यक्ति को जो आसुरी शासकों तथा राजनीतिज्ञों से भयभीत है, कृष्ण के इस अवतार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का स्वागत करना चाहिए। तभी हम इन आसुरी शासकों के उत्पीड़न से सुरक्षित रह सकेंगे। संप्रति ये शासन इतने शक्तिशाली हैं कि ये अनेक प्रकारेण सरकार के उच्च पदों को अपने कब्जे में करके असंख्य लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा या किसी आपातकाल के बहाने सताया करते हैं। तब फिर से एक असुर दूसरे असुर को पछाड़ता है, किंतु इसमें जनता उसी तरह सताई जाती है। अतः सारा विश्व एक संकटपूर्ण स्थिति में है और एकमात्र आशा बंधी हुई है इस हरे कृष्ण आंदोलन पर। भगवान नृसिंह देव का अवतार तब हुआ जब प्रहलाद अपने आसुरी पिता द्वारा अत्यधिक सताए जा चुके थे। ऐसे ही आसुरी पिताओं शासक राजनीतिज्ञों के कारण ही हरे कृष्ण आंदोलन को आगे बढ़ा पाना कठिन हो रहा है। किंतु अब जबकि कृष्ण अपने नाम के रूप में इस आंदोलन के माध्यम से प्रकट हो चुके हैं, तो हमें आशा करनी चाहिए कि इन आसुरी पिताओं का विनाश होकर रहेगा और सारे विश्व में ईश्वर का साम्राज्य स्थापित होगा। आज सारा विश्व राजनीतिज्ञों, गुरुओं, साधुओं, योगियों तथा अवतारों के भेष में असंख्य असुरों से भरा हुआ है और वे मानव समाज को सही लाभ देने वाले कृष्ण भावनामृत के बारे में जनता को भ्रमित कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कृष्ण, तो आप सभी भक्तों से आशीर्वाद की कामना करते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे इस भागवतम के इस बहुत ही सुंदर श्लोक के ऊपर। अध्याय का नाम है कृष्ण जन, और ये जो श्लोक है इसमें वसुदेव और देवकी माता प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। तो इसमें कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, हे समस्त सृष्टि के स्वामी, आप इस जगत की रक्षा करने की इच्छा से मेरे घर में प्रकट हुए हैं। मुझे विश्वास है कि आप क्षत्रियों का बाणा धारण करने वाले राजनीतिज्ञों के नायकत्व में जो असुरों की सेनाओं संसार भर में विचरण कर रही हैं, उनका वध करेंगे और निर्दोष जनता की सुरक्षा के लिए आपके द्वारा इनका वध होना ही चाहिए। तो एक भक्त के द्वारा ऐसी प्रार्थना कई बार समझ में नहीं आती, कि जो भक्त होते हैं वह तो सदा इस चीज की कामना करते हैं कि सबका फायदा हो, सबका लाभ हो। लेकिन यहाँ पे माता देवकी और वसुदेव, जो कि भगवान के अनन्य भक्त, उत्कृष्ट भक्तों में से, सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से एक है, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप वध करिए इन राजनीतिज्ञों का जो कि क्षत्रियों के रूप में शासन कर रहे हैं। तो हालांकि भगवान को कहा जाता है समोहम सर्वभूतेषु, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सबको एक दृष्टिकोण से देखता हूं, लेकिन जब हम भगवान के कई अवतारों, कई रूपों को देखते हैं तो उसमें जैसा तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के प्रकट होने के दो कारण होते हैं। भगवद गीता का जो सबसे मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्स है, परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, कि साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो इसमें ऐसा आता है कि साधुओं की रक्षा तो ठीक है, लेकिन दुष्टों का विनाश करने के लिए क्या उनको मारना ही चाहिए? क्या उनको मार के ही उनका विनाश किया जा सकता है? और भी कई प्रकार हो सकते थे जिसके द्वारा उनका, उनकी चेतना परिवर्तन की जा सकती थी, उनको भक्त के रूप में बनाया जा सकता था। लेकिन हम भगवान के जितने भी अवतार हैं उसमें देखते हैं कि वो हर अवतार में किसी न किसी प्रकार से उन्होंने किसी न किसी वेपन, किसी न किसी अस्त्र शस्त्र के माध्यम से जो असुर का विनाश किया। वराह रूप में हम देखते हैं भगवान ने हिरण्याक्ष का विनाश किया, उनके साथ युद्ध किया अपने गदा से। फिर उसके बाद नृसिंह रूप में हम देखते हैं भगवान ने क्या अस्त्र का इस्तेमाल किया, अपने नख का। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम, सारे असुरों का विनाश किया उन्होंने। उनका एक चौपाटी मंदिर में एक ड्रामा बना था नरसिंह लीला के ऊपर, उसमें एक डांस था, उसका नाम था खंभा तोड़ चीर फाड़ डांस। भगवान प्रकट हुए थे कैसे, खंभा तोड़ के, और उन्होंने असुरों का विनाश किया कैसे, चीर फाड़ करके। तो भगवान ने अपने नखों का इस्तेमाल करके असुरों का विनाश किया। फिर भगवान जब आए परशुराम के रूप में तो उन्होंने अपने किस अस्त्र का इस्तेमाल किया, फावड़ा है ना, एक्स का इस्तेमाल किया। फिर भगवान बलराम जी के रूप में आए तो उन्होंने इस्तेमाल किया अपने हल और मूशल का। और भगवान कृष्ण के रूप में भी आए तो भगवान ने सुदर्शन का इस्तेमाल किया, जैसे हम देखते हैं पौंड्रक शिशुपाल का वध किया। जब शिशुपाल भगवान का ब्लास्फेमी कर रहे थे राजसूय के बाद, ये कथा आती है भागवतम में, जब युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से प्रश्न करते हैं कि उस सभा के दौरान जब देखते हैं सब लोग कि किस प्रकार से शिशुपाल भगवान के बारे में बहुत ही अपशब्द वर्णन कर रहा था, तो वहां पे बैठे सब लोग बहुत क्रोधित हो रहे थे। भीम अपने हाथों को हिला रहा था कि कब ऑर्डर मिले और इसका मैं हरि बोल कर दूं। उसी प्रकार से अर्जुन, नकुल, सहदेव सब ऐसे सोच रहे थे कि इसको कैसे, हाउ कृष्णा इज टॉलरेटिंग, लेकिन भगवान ने सबको रोका हुआ था। और जैसे ही शिशुपाल ने अपना लिमिट क्रॉस किया, भगवान ने क्या किया, उनका वध कर दिया। तो सब लोग बड़े खुश हो गए और सब लोग ये सोच रहे थे कि अब ये जो दुष्ट है इसका विनाश हो गया, ये कहां जाएगा, नर्क लोक में जाएगा। लेकिन तभी क्या देखा, एक अचानक अद्भुत घटना हुई कि शिशुपाल के शरीर से, दिव्य शरीर से, शरीर से एक दिव्य आभा, एक ज्योति निकली और वो कहां समाहित हो गई, भगवान के दिव्य शरीर में समाहित हो गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कैसे ऐसा संभव है। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी कई वर्षों तक तपस्या करते हैं तब भी उनको ये गति प्राप्त नहीं होती, लेकिन शिशुपाल जैसा राक्षस, शिशुपाल जैसा दुष्ट, उसको ये विशेष गति प्राप्त हो गई। तो युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न पूछते हैं नारद मुनि से, फिर नारद मुनि वो पूरा कंटेक्स्ट सुनाते हैं कि किस प्रकार से जो ये शिशुपाल है और दंतावक्र और हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष और कंस, और सॉरी रावण और कुंभकर्ण, ये कौन थे पिछले जन्म में जय और विजय थे, तभी उनका ये विशेष गति उनको प्राप्त हुई। तुम देखते हैं कि हर अवतार में भगवान जो है वो अस्त्रों शस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं असुरों का वध करने के लिए, लेकिन एक विशेष रूप भगवान का आता है इस कलयुग में, क्या है वो, चैतन्य महाप्रभु का रूप। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के शुरुआत में लिखते हैं तीसरा श्लोक, अनर्पिता चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसा स्वभक्ति श्रियम हरिविटप सुंदरे हरिपुरत सुंदरे द्युति वितप संदीपिता द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु व सचिनंदना। वो कहते हैं कि अनर्पिता फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम चरिम चिरात, बहुत समय से भगवान का ये स्वरूप ऐसा प्रकट नहीं हुआ, जो कि कैसा है, करुणा से परिपूर्ण है, करुणा व तीर्ण कलो, वो इस कलयुग में आए हैं। किस रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जिन्होंने कैसा स्वरूप लिया है, हरि विटप सुंदरे, गोल्डन विटप मतलब स्वर्ण की भांति, स्वर्ण का जो कांति है उससे संदीपित, उससे लाइटेड, उससे जो उस आभा से परिपूर्ण भगवान का यह स्वरूप आया है। और क्या करने के लिए, किस लिए आए हैं, उन्नत उज्ज्वल रसा स्वभक्ति श्रीयाम, किस चीज को देने के लिए, अपनी भक्ति को देने के लिए, और उस उन्नत उज्ज्वल रस को देने के लिए जो कि भगवान के किसी रूप किसी अवतार ने उसको प्रदान नहीं किया बहुत आसानी से। भगवान ने अन्य जो अपने अवतार थे उसमें असुरों का वध किया और उनको क्या प्राप्त हुई, मुक्ति प्राप्त हुई। जिस प्रकार शिशुपाल भी भगवान के शरीर में जब समाहित हो गए तो एक प्रकार की मुक्ति है जिसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। पांच प्रकार की मुक्तियां हैं, सामिप्य, सालोक्य, साष्टी और सायुज्य। तो सायुज्य में भी दो प्रकार की मुक्ति है। एक मुक्ति है जिसमें से वो वापस आ जाते हैं, जिसको कि भागवतम में कहते हैं पतंती अधः, वो है भगवान के ब्रह्म ज्योति में जब विलीन हो जाते हैं। लेकिन एक सायुज्य मुक्ति होती है जो कि भगवान के शरीर में विलीन हो जाते हैं। तो ये जो सारे असुर थे, सो सारे दानव थे जिनका भगवान ने वध किया, उनको मुक्ति मिल गई। लेकिन चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हैं क्या? मुक्ति नहीं, मुक्ति से भी ऊपर एक चीज, वो क्या है? भगवान का उन्नत उज्जवल रस, भगवान का जो सबसे विशेष रस है भक्ति का, प्रेम का, वो देने के लिए आए हैं। और वो कैसे दिया उन्होंने? किसी अस्त्र शस्त्र के माध्यम से नहीं, किस रूप में दिया? हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वही संकीर्तन आंदोलन हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में लेकर कौन आए हैं? श्रील प्रभुपाद जी। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो हरे कृष्णा आंदोलन है, इसके गर्भ में कौन आए हैं? भगवान स्वयं आए हैं। और ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, श्रील प्रभुपाद कहते थे कि ये महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित आंदोलन है। तो इस आंदोलन में जो लोग भी हिस्सा ले रहे हैं या जो लोग भी हिस्सा लेंगे, वो बहुत ही विशेष हैं। भगवान ने अन्य अवतारों में लोगों को मुक्ति प्रदान की उनको मारकर, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इस रूप में, इस अवतार में लोगों को मुक्ति ही नहीं, भगवान का विशेष प्रेम दिया, और वो भी मारकर नहीं, मारकर नहीं। कैसे दिया? एक भजन में लिखते हैं कि दीनहीन जता छिलो हरि नाम उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई मधाई। कि सिर्फ हरिनाम के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे बड़े जो पापी थे, एग्जाम्पल के रूप में आता है यहाँ पे कौन? जगाई और मधाई, उनका भी उद्धार कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने। किस माध्यम से? इस हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। तो ये विशेष जो हरे कृष्ण महामंत्र है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अब ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, वही ये जो आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो शासक हैं, श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, इसको प्रदान करने के लिए इस हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में ये जो सारे राजनीतिज्ञ हैं, शासक हैं, इनका विनाश कैसे होगा? इनका विनाश शारीरिक रूप से नहीं होगा, इनका विनाश कैसे होगा? इनके जो मनोभाव है, जो मन की जो दुर्दशा है, उसको परिवर्तित करके। और वो कौन करेगा? वो करेगा ये हरे कृष्ण महामंत्र। और उसमें सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है किसको? हम सबको। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक कहावत है कि बहती गंगा में हाथ धो लो। तो देखिए, ये जो आंदोलन है ये तो चलेगा। महाप्रभु ने क्या बोला है? पृथ्वी ते आचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मर नाम। तो ये प्रचार तो होगा ही होगा, नोबडी कैन स्टॉप इट, कोई भी इसको नहीं रोक सकता। तो हम सबका सौभाग्य है, हमें यह मौका मिल रहा है कि इस आंदोलन में हिस्सा ले ले और अपने जीवन को सार्थक कर ले। ऐसा नहीं कि हम दूसरे के जीवन का सार्थक कर रहे हैं, अपना जीवन सार्थक करने का प्रयास कर रहे हैं इस आंदोलन में जुड़कर, हरे कृष्ण महामंत्र जुड़कर, इसका थोड़ा प्रचार करके, थोड़ी सेवा करके। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमको ये मौका मिला है। और प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि यही आंदोलन है जो कि इस पूरे विश्व में क्रांति लेकर आएगा। श्री प्रभुपाद जी के समय में कुछ भक्तों ने एक पॉलिटिकल पार्टी भी इस्टेब्लिश किया था, इन गॉड वी ट्रस्ट। लेकिन समहाउ उस समय उतना उसका प्रचलन नहीं हो पाया था। तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि ओके, लेट द टाइम कम, आने वाले समय में जरूर हमारे भक्तगण जो हैं वो राजनीतिज्ञ भी बनेंगे, वो शासक भी बनेंगे, वो ब्यूरोक्रेट्स भी बनेंगे। प्रभुपाद जी ने यह भी कहा था कि आने वाले समय में जो जज होंगे, कोर्ट के जज होंगे, वो कैसे जाएंगे? तिलक धारण करके। जो पार्लियामेंट होगा वहां पे भी हरे कृष्ण ये प्रभुपाद जी ने इंदिरा गांधी को एक ऐसी प्रस्तावना दी थी कि जितने भी पार्लियामेंट के सदस्य हैं उन सबको क्या करना चाहिए? आके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए, फिर चर्चा करनी चाहिए, और फिर जाने से पहले भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि इस कलयुग के लिए जो एकमात्र विधि है, जो एकमात्र उपाय है, वो क्या है? ये हरे कृष्ण महामंत्र। नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, इसके अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं है। चाहे हम कितना भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाएं, चाहे हम कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर लें, व्हाटएवर वी डू, कुछ भी हम कर ले, लेकिन हमारा उद्धार होगा इस कलयुग में खासकर इस हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से, इस हरे कृष्ण महामंत्र के प्रचार से ही। ये महामंत्र हमेशा से ही शक्तिशाली रहा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस युग में ही इसका प्रभाव है, लेकिन इस युग में खासकर इसका महत्व बढ़ जाता है। हम देखते हैं सतयुग में जो वाल्मीकि मुनि थे उनका भी उद्धार कैसे हुआ, वो एक डकैत मतलब डाकू थे बहुत बड़े, लेकिन उनका उद्धार नारद मुनि ने कैसे किया, कैसे उनको एक भक्त बने वो भगवान राम का नाम लेकर, वो भी उल्टे प्रकार से मरा 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 ऐसे बोलकर। तो भगवान के नामों में इतनी शक्ति है कि वो हर किसी के प्रकार के हर प्रकार के जीवों का उद्धार कर सकता है, चाहे हमने कितने भी पाप कर्म किए हों, चाहे कितने भी ऐसे कर्म किए हों जो कि वांछनीय नहीं है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने वाला व्यक्ति का हर प्रकार से उद्धार हो सकता है। क्योंकि ये महामंत्र जैसा हमने बताया कि शारीरिक रूप से विनाश नहीं करता, ये आंतरिक रूप से जो मन की जो दुर्दशा है, जो मन के ऊपर जो गहरे इंप्रेशन है उसका नाश करता है। एक बार 3-4 साल पहले की बात है, एक भक्त ऐसा बता रहे थे कि वो मायापुर यात्रा में गए थे, तो वहां पे उनको एक विदेशी भक्त मिले, तो उन विदेशी भक्त के शरीर पे बहुत सारे रेड रेड मार्क्स थे, बहुत सारे मतलब चेहरे पे हाथ पे। तो ऐसे ही उन्होंने पूछ लिया कि प्रभु जी ये क्या, आपको कोई रिएक्शन तो नहीं हो गया, कोई दवाई ऐसे एलर्जी तो नहीं कर गया? तो बोले नहीं, ये मच्छरों के काटने की वजह से हुआ है। तो उन्होंने बोला कि आप फिर मॉस्किटो रिपेलेंट या कुछ ऐसा चीज इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि ये धाम के मच्छर मुझे काट रहे हैं, आपको पता नहीं मैं कितना पापी आदमी हूं, कितना गिरा हुआ इंसान हूं। जब यूएस का युद्ध था, वियतनाम से चल रहा था, और उसके आगे कई सारे युद्ध में उनका डिप्लॉयमेंट हुआ था क्योंकि वो आर्मी में थे, तो बोले कि हम वहां पे ऐसे दर्दनाक चीजें करते थे, ऐसे घृणित कार्य करते थे कि बिना सोचे समझे किसी को भी गोली मार देते थे, जो स्त्रियां होती थी, जो महिलाएं होती थी उनका बलात्कार कर देते थे, और ऐसे कई सारे घृणित कार्य किए। तो ये जो मच्छर है ये मेरा खून चूस कर मेरा उद्धार कर रहे हैं, मेरे शरीर की जो मेरे खून में जो गंदगी है उसको वो साफ कर रहे हैं। तो देखिए कैसे परिवर्तन हो जाता है हृदय का इस आंदोलन में जुड़ने से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्री है जो कि लोगों का हृदय परिवर्तन करेगा, और आने वाले समय में जो राजनीतिज्ञ होंगे, जो शासक होंगे, इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप से, इसके प्रभाव से ही इस संसार को एक ऐसा स्थान बना पाएंगे जहां पे लोग रह सके। नहीं तो दिन प्रतिदिन हर प्रकार की चीजें, हर प्रकार की समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, पहले तो ग्रॉस रूप में था, अब सटल रूप में भी कई सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आने की वजह से। तो इस सब का निवारण है सिर्फ ये हरे कृष्ण आंदोलन में सम्मिलित होना, इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, और ये सब प्रभुपाद जी की कृपा से हम सबको मिल रहा है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसको अपनाएं अपने जीवन में और इसको और आगे प्रचार करें और लोगों को इस आंदोलन से जोड़े ताकि वो भी अपने जीवन को सफल बना सके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो आज एक भक्त भागवत का भी तिरुभाव दिवस है, तो हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो चर्चा करने से पहले बहुत सुंदर भजन है उनके बारे में, कई सारे भजन लिखे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने लोकनाथ गोस्वामी के ऊपर, लेकिन दो विशेष भजन हैं जो कि प्रायः बहुत प्रचलित हैं, एक जो हम गाते हैं गुरु पूजा के रूप में जिनमें उनका साक्षात नाम आता है, और एक और भजन है जो कि हम यहाँ पे तो प्रतिदिन नहीं लेकिन मायापुर धाम में प्रतिदिन इसको गाया जाता है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तो वो भजन थोड़ी देर गाएंगे, फिर लोकनाथ गोस्वामी के जीवन के ऊपर थोड़ी सी चर्चा।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसार, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसार, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे श्री कृष्ण प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत पतित पावन हे तू तव अवतार मुसम पतित प्रभु न पाइबे पतित पावन हे तू तव अवतार मुसम पतित प्रभु न पाइबे पतित पावन हे तू तव अवतार मुसम पतित प्रभु न पाइबे पतित पावन हे तू तव अवतार मुसम पतित प्रभु न पाइबे आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो आमी बरो दुखी आहा प्रभु प्रेमानंद सुखे कृपावलोकन करो हमी बरो दुखे हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो आमी बरो दुखी हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो आमी बरो दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तव कृपा बले पाए चैतन्य नीता दया करो तीतापते तव कृपा बल दया करो सीतापति अद्वैत गो तव कृपा बले पाए चैतन्य नेताय दया सीतापति अद्वैत गो तव कृपा बले चैतन्य नेता हाँ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ बट जुग से जीवा प्रभु लोकनाथ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ बट जुग से जीवा हाँ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ पट जोग श्री जी महाप्रभु लोकनाथ सनातन रूप रघुनाथ बट जुग सुजीवा प्रभु लोक दया करो श्री आचर प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मंगे नरोत्तम दास दया करो श्री आचर प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मंगे प्रभु श्रीनिवास दया करो श्री आचर प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास दया करो प्रियाचर प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे प्रभु श्रीनिवास स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ बट जुग श्रीजी महा प्रभु लोकनाथ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ बट जुग श्री जीवा प्रभु लोकना आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ बट जुग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ स्वरूप जीवा प्रभु लोकना।
तो इस भजन का अनुवाद है, हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मुझ पर दया कीजिए, इस संसार में आपके समान दयालु और कौन है। हे प्रभु, पतितों को पावन करने हेतु ही आपका अवतार हुआ है, मेरे समान पतित आपको और कहीं नहीं मिलेगा। हे नित्यानंद प्रभु, आप तो सदैव गौरांग देव के प्रेमानंद में मत रहते हैं, कृपया करके मेरे ऊपर दृष्टिपात कीजिए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। हे अद्वैत आचार्य, आप मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि आपके कृपा बल से ही चैतन्य निताई के चरणों की प्राप्ति संभव हो सकती है। हे शिल स्वरूप दामोदर गोस्वामी, हे शिल सनातन गोस्वामी, हे शिल रूप गोस्वामी, हे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, हे श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, हे श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, हे श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील लोकनाथ गोस्वामी, आप सब मुझ पर कृपा कीजिए, ताकि मुझे श्री चैतन्य चरणों की प्राप्ति हो। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्रीनिवास आचार्य, आप मुझ पर कृपा करें, ताकि मैं श्री रामचंद्र कविराज का संग प्राप्त कर सकूं। वैष्णव ठाकुर की। तो श्री लोकनाथ गोस्वामी का एक प्रणाम मंत्र है, जो कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा कंपाइल किया गया है, तो कृपया करके आप मेरे पीछे दोहराइए। श्रीमद राधा विनोदैका सेवा संपत समन्वितम पद्मनाभा आत्मजम श्रीमल लोकनाथ प्रभुम भजे। लोकनाथ गोस्वामी के बारे में श्री रतन दास ठाकुर किस रचना में लिखते हैं कि मैं श्री लोकनाथ गोस्वामी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कि श्री पद्मनाभ के आत्मज हैं, पुत्र हैं, वो भंडार हैं कि किस प्रकार से एक मत होकर भगवान के श्री चरण कमल, श्री श्री राधा विनोद के श्री चरण कमल की सेवा में नियुक्त होना चाहिए। तो श्रील लोकनाथ गोस्वामी का जन्म हुआ था तालाखोरी गांव, जो कि जेसोर डिस्ट्रिक्ट आज प्रेजेंट बांग्लादेश में है, वहां पे उनका जन्म हुआ था। इसी के पास रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अनुपम गोस्वामी, इन सब का जन्म भी इसी स्थान के पास में ही हुआ था। और श्री लोकनाथ गोस्वामी के पिताजी थे श्री पद्मनाभ और उनके माताजी का नाम था सीता देवी। तो बचपन से ही लोकनाथ गोस्वामी, क्योंकि भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनका बड़ा आकर्षण था चैतन्य महाप्रभु को लेकर। इनका जन्म चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के आसपास ही हुआ था। तो जैसे ये थोड़े बड़े हुए तो तुरंत ही वहां से नवद्वीप की ओर प्रस्थान कर गए। और इनके जो माता पिता थे, श्री अद्वैत आचार्य के द्वारा इनको कृपा प्राप्त थी, तो अद्वैत आचार्य की कृपा से लोकनाथ गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ। और काफी समय इन्होंने नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहकर विद्या अर्जन में, और उनके साथ जब चैतन्य महाप्रभु जैसे बड़े बड़े पंडितों को, विद्वानों को हराया करते थे निमाई पंडित के रूप में, तो लोकनाथ गोस्वामी भी उनके साथ होते थे। और फिर थोड़े समय बाद जब चैतन्य महाप्रभु को संन्यास लेना था, तो चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी को अपने पास बुलाया और उनको अपना ये जो सीक्रेट था वो शेयर किया, और उनको बोला कि आप क्या करो, आप यहाँ से प्रस्थान कर जाओ वृंदावन धाम की ओर, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं संन्यास लेकर अपना मुंडन बालों को अपने सर से मतलब मुंडन करके, और फिर उसके बाद मैं वृंदावन की ओर आऊंगा। तो जैसे ही लोकनाथ गोस्वामी को ये सुनने को मिला, वो बहुत ही दुखी हो गए, रोने लगे, मूर्छित से हो गए, कैसा कैसे हो सकता है। तो महाप्रभु के बाल खासकर इतने सुंदर थे, इतने घुंघरेले थे, वो सोच भी नहीं पा रहे थे कि कैसे ये जो बाल है महाप्रभु इसका मुंडन करा लेंगे। और उनको बहुत ही संवेदना महसूस हो रही थी, बहुत ही अलगाव महसूस हो रहा था चैतन्य महाप्रभु से, लेकिन क्योंकि महाप्रभु का आदेश था तो इसलिए लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। फिर लेकिन चेंज, एक ट्विस्ट आ गया, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर ना जाकर कहां चले गए, जगन्नाथपुरी चले गए। तो उस समय कोई ऐसा पोस्टल या कोई टेलीग्राम या कुछ ऐसी व्यवस्था थी नहीं, तो लोकनाथ गोस्वामी को वर्षों बाद यह खबर मिली कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो वृंदावन नहीं आ रहे हैं, वो जगन्नाथपुरी की ओर चले गए हैं। तो दोबारा से वो बहुत विरह में आ गए, बहुत शोक संतप्त हो गए, उनको लगा कि महाप्रभु ने बोला था वो आएंगे और इसीलिए मैं उनको छोड़कर यहाँ वृंदावन आया, लेकिन अब महाप्रभु यहाँ नहीं आएंगे तो मैं कैसे अकेले यहाँ पर रहूं। उस समय रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भी यहाँ पर नहीं थे, तो ही वॉज लाइक इन वन सेंस अकेले एक प्रकार से थे उस समय वहां पे वो। तो फिर थोड़े समय बाद क्या पता चला कि महाप्रभु अब पुरी को भी छोड़ के कहां चले गए हैं, दक्षिण भारत की यात्रा में चले गए हैं। तो अब उन्होंने विचार कर लिया कि मैं भी अब यहां पर नहीं रहूंगा, मैं भी चला जाऊंगा दक्षिण भारत, वहां पे चैतन्य महाप्रभु के दर्शन को प्राप्त करूंगा। लेकिन उस समय कोई ऐसा जीपीएस का लोकेशन नहीं था कि महाप्रभु कहां है अभी तो हम वहां पहुंच जाएं, है कि नहीं। और उस समय कोई व्हीकल्स भी ऐसे नहीं होते थे कि तुरंत से पकड़ के फ्लाइट पकड़ के आप चले गए, तो पैदल पैदल ही जाना होता था। तो जहां भी पहुंचते थे उनको क्या पता चलता था कि महाप्रभु यहां से निकल चुके हैं, आगे चले गए हैं। तो ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए और फाइनली उनको क्या पता चला कि महाप्रभु वापस जगन्नाथपुरी जा चुके हैं। तो बहुत दुखी हुए, बहुत ही उनको संवेदना हुई, बड़े बड़े परेशान थे, ऐसा लग रहा था उनको कि महाप्रभु के दर्शन होंगे नहीं होंगे दोबारा। तो फिर समय फिर वो किसी प्रकार से उनको मैसेज मिला ऐसा, तो वो फिर वृंदावन आए। वृंदावन आए तो उनको ये सूचना मिली कि महाप्रभु अब वृंदावन आने वाले हैं, तो वो भी फिर वृंदावन आए। लेकिन वृंदावन पहुंचे तो क्या पता चला कि महाप्रभु यहाँ 2 महीने रह के यहाँ से भी जा चुके हैं। मतलब हर जगह उनको निराशा ही प्राप्त हो रही थी और वो बार बार वो बहुत दुखी होते थे कि महाप्रभु का संग नहीं मिल रहा। तो उनको पता चला कि अब महाप्रभु वृंदावन से कहाँ गए हैं, काशी की ओर गए हैं। तो उन्होंने ये ऐसा मत बना लिया कि आज रात को मैं, मतलब कल सुबह मैं यहां से निकल जाऊंगा वहां की ओर, काशी की ओर। तो उसी रात को उनको स्वप्न में आए चैतन्य महाप्रभु और महाप्रभु ने बोला कि नहीं, आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं पे रहिए और मेरे कुछ प्रमुख शिष्य हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो यहाँ पर आएंगे, आप उनका संग लीजिए। तो महाप्रभु का आदेश था क्योंकि, तो इसलिए लोकनाथ गोस्वामी फिर वहीं पे वृंदावन धाम में ही अपनी एक कुटिया बनाकर खादीर वन, वृंदावन जो व्रज है वो 12 फॉरेस्ट 12 वनों से बना हुआ है, तो यमुना के वेस्टर्न साइड में जिस साइड वृंदावन आता है उसी साइड में खदीर वन भी आता है। तो खदीर वन में किशोरी कुंड के समीप लोकनाथ गोस्वामी ने अपना निवास स्थान चुना और वहीं पे रहकर वो भजन किया करते थे। ये मुड़ाव गांव के पास पड़ता है और बिल्कुल एकांतिकी भजन करते थे और किसी से ज्यादा मेल मिलाप, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करके हमेशा अपना ध्यान चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण की सेवा में लगाते थे। समो एक दिन उनके हृदय में ऐसा विचार आया कि अगर मेरे पास भी कोई बिगड़ा होते तो मैं उनकी सेवा कर पाता। तो जैसे कहते हैं कि भक्त जो हैं वो भक्त की जो इच्छा होती है भगवान उसको कभी निराश नहीं करते हैं। तो अगले दिन ही उन्होंने, भगवान ने ब्राह्मण का एक रूप लेकर लोकनाथ गोस्वामी को दर्शन दिया और उनको एक विग्रह दिए, छोटे से विग्रह दिए उनको और उनको बोला कि ये विग्रह है, आप उनकी सेवा करो। और ऐसा ही बोल के वो तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। तो उस विग्रह को प्राप्त करके लोकनाथ गोस्वामी बड़े सुखी भी हुए, बहुत उनको प्रसन्नता भी हुई और फिर थोड़ा दुख भी हुआ कि वो कौन थे जो मुझे लेकर आए, मैं उनका अच्छे से स्वागत नहीं कर पाया, उनसे बातचीत नहीं कर पाया। तभी उन डीटीज, वो जो डीटीज थे, उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी से बातचीत की और उनको बताया कि मैं राधा विनोद हूं और मैं बहुत समय से इस स्थान पे था और मेरी इच्छा है कि आप मेरी सेवा करो। तो लोकनाथ गोस्वामी का हृदय इतना इतना विस्मय से और इतना प्रेम से भर गया कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्या करूं कैसे करूं। तो भगवान ने उनको आदेश दिया कि आप मेरे लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो अब वहां पे वो अकेले रहते थे और खुद अपना जीवन तो किसी प्रकार से चला लेते थे, लेकिन भगवान की सेवा करनी थी। तो पास के गांव में गए, वहां से लोगों से कुछ भिक्षा मांग के लाए और फिर उसी से जो बन पाया वो बन बना के उन्होंने भगवान को अर्पित किया। और इस प्रकार से वो भगवान की सेवा करने लगे और जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था, जो वहां पे फैसिलिटीज अवेलेबल थी, फूल पत्ते वही सब भगवान को ऑफर करते थे। भगवान को सोने के लिए फूलों का एक बेड बनाते थे, उनको सुलाते थे, उनकी सेवा करते थे और गांव से जाकर जो भी भिक्षा मिलती थी उसी से भगवान की सेवा करते थे। तो एक दिन किसी ने उनको कोई पुराना सा वस्त्र दिया, तो उस वस्त्र को सिलकर लोकनाथ गोस्वामी ने एक बैग बनाया और उस बैग को अपने गले में धारण करते थे और उसी बैग के अंदर वो राधा विनोद के डीटीज को हमेशा अपने साथ रखते थे और जहां भी जिस स्थिति में होते थे उस प्रकार से उनकी सेवा करते थे। फिर थोड़े समय बाद जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वृंदावन आ गए तो उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी को संदेश भेजा कि आप कृपया करके वृंदावन में आ जाइए। तो लोकनाथ गोस्वामी हालांकि वो जगह छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनको स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का भी संदेश उनको मिला, तो फिर यहाँ आकर वृंदावन धाम में और जो अभी प्रेजेंट गोकुलानंद मंदिर है जहां पे की डीटीज हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के, गोकुलानंद जी और बलदेव विद्याभूषण जी के भी डीटीज हैं, श्री श्री राधा विजय गोविंद और लोकनाथ गोस्वामी के जो डीटीज हैं राधा गोविंद। वहां पे एक और बहुत विशेष शिला है, वो गोवर्धन शिला है जिसपे चैतन्य महाप्रभु के थंब के इंप्रेशन हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने भेजा था किसके लिए, रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए। तो उस स्थान पर वो उन्होंने अपनी भजन स्थली बनाई और आज के डेट में उनका जो समाधि है वो भी उसी स्थान पर है। तो वहां पे वो सेवा करते रहे विग्रहों की और उसी दौरान उनको एक और आदेश मिला चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्वप्न में कि मेरा एक बहुत ही विशेष भक्त है नरोत्तम, वो थोड़े समय में आपके पास आएगा और आप कृपया करके उसको अपना शिष्य बनाएं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो थे वो राजघराने से थे, वो एक प्रिंस थे, उनके पिताजी थे कृष्णानंद दत्त, वो महाराजा थे वेस्ट, अभी जो बांग्लादेश का क्षेत्र है वहां के। तो वो सब कुछ छोड़कर नरोत्तम दास ठाकुर आ गए यहाँ पर, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी उनको दीक्षा नहीं देना चाहते थे, कहते थे कि नहीं, मैं किसी को शिष्य धारण नहीं करना चाहता, मैं इतना उत्कृष्ट नहीं हूं, आप मेरे से ज्यादा उत्कृष्ट हैं क्योंकि आपको महाप्रभु द्वारा स्वयं प्रेम प्रदान किया गया है और आप राजघराने से हैं, तो मैं उस काबिल नहीं हूं कि आपको दीक्षा प्रदान कर सकूं। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर प्रयास करते रहे, वर्षों तक उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत सेवा किया लोकनाथ गोस्वामी का। एक फेमस पास्ट टाइम हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से जब लोकनाथ गोस्वामी अपना नित्य क्रिया के लिए जाते थे तो प्रतिदिन उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर जाकर उस स्थान को साफ करते थे। तो लोकनाथ गोस्वामी ने बहुत दिनों तक ये नोटिस किया, फिर उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे होता है ये स्थान, कैसे कौन इसको साफ करता है। तो एक दिन वो झाड़ी में छिपकर देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर जो उनका मल मूत्र है उसकी सेवा इस प्रकार से कर रहे थे जैसे अर्च विग्रहों की सेवा होती है। तो लोकनाथ गोस्वामी का हृदय बड़ा विदीर्ण हो गया, वो बाहर आए, उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को बोला कि आप क्या कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता, आप तो राजकुमार हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी को बहुत ही विनम्रता पूर्वक नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रार्थना की और इस इंसिडेंट के बाद फिर लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार किया। तो ये कुछ वर्णन था लोकनाथ गोस्वामी के जीवन चरित्र से। चलिए लोकनाथ गोस्वामी तिरुभाव दिवस महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।